दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियां।
एरिक भाई, ओम शांति प्रशांत भाई, सीइंग इनटू बीइंग, दृष्टि से सृष्टि इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सब आपसे सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यज्ञ में काफी वर्षों से हैं और आपके सोचने का व देखने का अंदाज बहुत ही अनोखा है, ये हम सब जानते हैं। तो हम सबसे पहले दृष्टि से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जब पहले पहले आप ज्ञान में आए और आपको सतयुग की जानकारी मिली, ज्ञान मिला, तो उस समय स्वर्णिम युग के आपको क्या अनुभव हुआ? प्रशांत भाई, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं, मुझे सतयुग का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। थोड़ी बहुत कल्पना व कुछ संपूर्णता का आइडिया मुझे मिला, लेकिन मैं उस शुरू के आइडिया को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहूंगा। एरिक भाई, तो बाद में क्या हुआ? उस कुछ नहीं से कुछ में परिवर्तन कैसे हुआ? प्रशांत भाई, मैंने स्व उन्नति का अनुभव किया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि मेरी स्वयं से पहचान हुई। सत्युग को तो अभी हम एक तरफ रखते हैं, मनुष्य की क्षमता का मुझे एहसास हुआ, हमारे लिए क्या क्या अनुभव करना संभव है इसकी मुझे समझ मिली। मन की प्राचुर्यता व दिल की प्राचुर्यता अर्थात उस रिचनेस की समझ मुझे मिली। जब मैंने इसे और गहराई से जाना और अनुभव किया, तब मुझे वर्तमान समय जो अभी हमारी स्वस्थिति है और संसार का जो बुरा हाल है, उसकी तुलना में हमारा जो मूल स्वरूप था, मन और दिल का वास्तविक स्वरूप, उस स्वरूप में आना मुझे संभव लगने लगा। ये तुलनात्मक बात मुझे समझ में आ गई। तब मुझे ये आभास हुआ कि ये तो जैसे स्वर्णिम युग का एक प्रतिबिंब है। एरिक भाई, क्या आप इस तुलनात्मक बात को थोड़ा और विस्तार में बताएंगे? आप मन और बुद्धि की क्षमता का अनुवाद भविष्य सत्यों की दुनिया से कैसे करेंगे? प्रशांत भाई, ऐसा मन जिसमें शून्य अहंकार है, शून्य दुख है, शून्य इच्छाएं हैं, इस मन को जानना, ऐसा एहसास होना कि सभी का मन ऐसा ही है, हर एक के मन की प्रारंभिक अवस्था ऐसी ही होती है। ऐसा मन जो सर्व गुणों से भरपूर होता है, हम ऐसे मन को वर्तमान मन से व वर्तमान समय से तुलना कर सकते हैं। इस समय हम गुणों को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब उस वास्तविक शांति को, वास्तविक प्रेम को अनुभव करने की कोशिश में लगे हैं। ये तुलनात्मक बात मुझे समझ में आई। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि यही मन व बुद्धि की सही अवस्था है, तो हमें समाज की अवस्था का भी अंदाज हो सकेगा। एरिक भाई, तो सतयुग के दृश्य जैसे कि महल, तख्त, मोर के बजाय आपने सतयुगी स्वरूप का अनुभव क्या ज्यादा किया? प्रशांत भाई, मेरे लिए कुछ ऐसी ही प्रक्रिया रही। दिल को जानना, व्यक्तित्व को जानना, स्वर्णिम युग को जानना, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। स्वर्णिम युग कोई बाहरी दुनिया की बात नहीं। हमें ताज तो यहाँ भी मिल सकते हैं। हमारे मन की अवस्था अनुसार स्वर्णिम युग कहलाएगा। एरिक भाई, ये बहुत रोमांचक बात है। सत्युग की तरफ हम सबका आकर्षण है, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदरता है। बाबा ने हमें सत्युग के बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे वहाँ गीत गाने वाले पक्षी होंगे, फल देने वाले वृक्ष होंगे। बाबा हमें सत्युग के बारे में बताते रहते हैं। कभी कभी ये कल्पना भी लगने में आता है, ये गाते हुए पक्षी आम के पेड़ से ही डायरेक्ट रस का निकलना आदि आदि, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये सब स्वर्णिम युग में कैसे दिखाई पड़ेगा? प्रशांत भाई, अगर सूक्ष्म रूप में हम ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इस भौतिक दुनिया से परे है, ऐसी प्रकाश की दुनिया जहाँ सर्व आत्माएं अपने अनंत अनादि आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, संपूर्ण निरअहंकारी हैं, हर आत्मा ऊंचे सम्मान लेने के योग्य है, हर आत्मा उस गहन स्नेह को पाने की पात्र है, आत्मा एक प्यारी बच्चे की तरह है, परमात्मा के समान है। आत्मा की ऐसी ऊंची अवस्था वहाँ इसलिए होगी क्योंकि वहाँ आत्माएं अज्ञानता से परे हैं और संपूर्ण स्पष्ट स्वरूप में हैं। वे अपने संपूर्ण स्वरूप के कारण सम्मान के पात्र होती हैं। यहाँ पर सभी आत्माएं मिलकर गहन शांति का वातावरण बनाती हैं। यहाँ कोई भौतिकता नहीं है, सब एक जैसा अनुभव करते हैं, सबको अपने पन का अनुभव होता है। ये सब अनुभव सूक्ष्म रूप में होते हैं, ये सब हमारे मन की ही तो बात है। जब हम ऐसा अनुभव सूक्ष्म रूप में करते हैं तो यह अनुभव बाह्य रूप में भी प्रदर्शित होता है, और जब बहुत सारे लोग इस सूक्ष्मता का अनुभव करेंगे और अपनी स्थिति में पूर्णतः स्पष्ट होंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो अपने लिए इस संपूर्ण और सुंदर स्थिति को प्रभावशाली बनाएंगे, तो प्रत्यक्षता हो ही जाएगी। जैसे कि बाबा हमें समझाते हैं कि जहाँ आत्माओं का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होगा, जहाँ सबका एक दूसरे के साथ अत्यंत खूबसूरत रिश्ता होगा, अभी जो यह सूक्ष्म रूप में है, स्वर्णिम युग में इस सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति होगी। एरिक भाई, जैसे कि आपने पहले बताया कि दिल और दिमाग का अपना सामर्थ्य होता है, और हम समझते हैं कि ये सब संगठित रूप से ही हो सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि सबका गोल्डन एज के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण है। सभी ने अपने अपने तरीके से इसकी झलक का अनुभव किया है। यहाँ आप क्या सोचते हैं कि यह संगठित रूप से कैसे होगा? यज्ञ भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम संस्कारों को देखें तो एक तरफ हमें गोल्डन एज के संस्कार दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग अपने पुराने संस्कारों से ही खुश हैं। तो ऐसी स्थिति में संगठित रूप से स्वर्णिम युग कैसे प्रत्यक्ष होगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? प्रशांत भाई, जैसे बाबा कई बार हमें बताते हैं कि दुख धाम के बाद हमें शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम में आना है, लेकिन सुख धाम के भी पहले बीज का होना आवश्यक है। बिना बीज के कोई भी वृक्ष नहीं फल सकता, तो यहाँ बीज का अर्थ है अनादि परिस्थान का अनुभव करना, जिसे हम सूक्ष्म रूप अथवा बीज रूप का अनुभव करना कह सकते हैं। तो बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सभी ब्राह्मण परिवार को अपना पुरुषार्थ करके इस स्थिति को शक्तिशाली और गहन बनाना है। हम सब जितना जितना इस बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना उतना विश्व की आत्माओं को इसका अनुभव करने में आसानी होगी। डायरेक्शन ही कुछ ऐसा है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम इस बीज के बिना स्वर्णिम युग में जा नहीं सकते। वर्तमान समय में यदि हम इस बीज की पालना करेंगे, इसे शक्तिशाली बनाएंगे, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक अवस्था का ही प्रतिबिंब है। एरिक भाई, क्या हम बीज को आत्मा का रीसेट या पुनर्निर्माण होना कह सकते हैं? प्रशांत भाई, बीज माना उस बीज रूप स्थिति का अनुभव करना। बीज को आत्मा का रीसेट कहा जा सकता है। ये एक अच्छी इमेज है, लेकिन इस बीज को पालना की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक झटके से वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें अलग अलग दृष्टिकोण से इसे देखना होगा। जैसे कलयुग में हमारा मन भौतिक दुनिया की बातों के विस्तार में ही लगा रहता है, यहाँ हम मन को सूक्ष्म वतन की बातों की गुह्यता में केंद्रित करने का पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ हम समय को अनादि परिस्थान को देखने में लगाते हैं। हम स्वयं को आत्मिक परिवार के साथ व परमात्मा के साथ अपने अनादि असली घर में देखते हैं। ये सब जैसे बड़ा आश्चर्य सा प्रतीत होता है। इस आत्मिक संबंध की प्रचुरता का अथवा रिचनेस का अनुभव करने के लिए समय चाहिए, जिससे कि भिन्न भिन्न पहलुओं से हम इस संबंध का आनंद ले सकें। यहाँ संपूर्ण शांति ही शांति है। इस साइलेंस की दुनिया को अनादि परिस्थान कहा जा सकता है, जहाँ हम स्वर्णिम युग से भी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। स्वर्णिम युग तो जैसे कि इसका ही प्रतिबिंब है। एरिक भाई, तो क्या आपके विचार से हमारा अनादि स्वरूप स्वर्णिम युग के स्वरूप से भी ऊंचा है? प्रशांत भाई, स्वर्णिम युग तो आना ही है, लेकिन ये अनादि परिस्थान ओरिजिनल है, रियल है। गोल्डन एज तो फिर भी ड्रामा का ही हिस्सा है। गोल्डन एज इसलिए है क्योंकि इसके पीछे बीज है। एरिक भाई, क्या आपने अपने इतने वर्षों के ब्राह्मण जीवन में ऐसे ही सोच विचार किए हैं, या फिर जैसे बहुतों के साथ ऐसा होता है कि ज्ञान के शुरू में तो ऐसे विचार आते हैं, लेकिन फिर सेवा में लग जाने से ये सब बातें जैसे कि भुला जाती हैं? इस कार्यक्रम के द्वारा हम सतयुगी दुनिया को गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम उस परिवर्तन की घड़ी की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपके ब्राह्मण जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जब आपने भविष्य के बारे में सोचा और आपको अंदर से ये आभास हुआ कि अब भविष्य दुनिया से कनेक्ट होना आवश्यक है? प्रशांत भाई, नहीं, मुझे ये इतना जरूरी नहीं लगा। मैं इसकी खोज में नहीं था। ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पर मुझे अलग अलग क्षेत्रों को जानना था। मेरा अव्यक्त स्थिति के अनुभव पर ज्यादा जोर रहा। जब हमें कुछ बातों की समझ मिलने लगती है, तो हमें उसकी और गहराई में जाने की इच्छा होती है, जिससे कि हमें और भी अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। हमें मनुष्य आत्माओं की सूक्ष्मता का और क्षमता का आभास होने लगता है। जब हम ये शब्द आत्मा का प्रयोग करते हैं तो हमें आत्मा की समझ मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात की हम चर्चा करते हैं, परम आत्मा, फरिश्ते, ऐसे रियल शब्दों का प्रयोग आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए उपयुक्त है। जब हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को यथार्थ रूप से देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में भी वह दिखाई पड़ने लगता है, और यही गोल्डन एज है, यही सतयुग है। भौतिक स्तर पर सुंदरता व संपूर्णता सही मायने में अप्रासंगिक है, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो स्वर्णिम युग का व्यक्तित्व अर्थात गोल्डन एजेड पर्सनालिटी होगी। भौतिक संसार तो आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब है। अगर काफी संख्या में लोग इसका अनुभव करें, उस परिपूर्णता का, उस भरपूरता का, उस संपूर्णता का, उस असीम प्रेम का अनुभव करें, तो उससे आत्मा जागृत हो जाती है। इस समय यही हो रहा है, हम सब ये अनुभव कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं। ये असंभव है कि ड्रामा हमें कुछ और दृश्य दिखलाएगा। भौतिक स्तर पर हम ये सब देखेंगे, जैसे बाबा कहते हैं। और आज भी बाबा ने कहा कि स्वर्णिम युग में हम 16 कला संपूर्ण थे, और अब हमारी कोई भी कला नहीं रह गई। बाबा हमें आंतरिक संपूर्णता व आंतरिक संपन्नता देखते हैं। यही बाबा की विधि है। बाबा इसी स्तर पर कार्य करते हैं, फिर बाकी सब अपने आप ही होता चला जाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई विजन्स नहीं दिखाई पड़े। हाँ, मुझे कुछ विजुलाइजेशन होते रहते हैं जिनका कोई उतना अर्थ नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर आंतरिक संपूर्णता को बाह्य रूप में आना ही। एरिक भाई, हम उस संपूर्णता को पाने का अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप मेडिटेशन के द्वारा हमें कुछ मिनटों के लिए ऐसी संपूर्ण अवस्था के अनुभव में ले चलेंगे? क्या हम ऐसा करें? प्रशांत भाई, हाँ जरूर। अच्छा अनुभव पाने का एक बहुत बड़ा राज है कि हम अपने मन को सर्व इच्छाओं से परे वनेर अहंकारी स्थिति में स्थित करें।
यूजिंग द स्पिरिचुअल साइट,
अपनी रूहानी दृष्टि से इस भौतिक संसार को
एज अ स्मॉल थिएटर,
एक रंग मंच की तरह देखें,
इंक्लूडिंग द प्रेजेंट सीन,
वर्तमान में होने वाले सीन, वो बीती हुई सभी बातें इस रंग मंच का ही तो हिस्सा है।
कम बियॉन्ड द स्टोरी,
तो चलिए अपनी रूहानी दृष्टि से
रियल वर्ल्ड,
अब हम इस रंग मंच से परे, इस कहानी से परे अपने वास्तविक घर की ओर उड़ चले।
लिविंग स्टार्स वर्ल्ड विथ द फादर,
जहां आत्माएं बहुत सूक्ष्म हैं,
लुक लाइक स्टार्स दैट अपीयर्स
अनादि स्वरूप में है।
इट इज नॉर्मल टू बी इमॉर्टल,
ये चैतन्य सितारों की दुनिया
बिलोंग टू गॉड,
ऐसी दुनिया
लव्ड बाय गॉड,
जहां हम अपने प्यारे पिता के साथ
इज नॉर्मल
सब आत्माएं सितारे की तरह चमक रही हैं। आत्मा अविनाशी स्वरूप में है, परमात्म प्यारी है। सर्व आत्माएं एक ही परिवार का सब सूक्ष्म रूप में है।
There are no reason for sorrow.
सबकी कहानी अलग अलग
है। No reason for attachments. They find it strange.
इस कहानी में
in that story.
इन जगमगाती आत्माएं
they stay in that
इच्छाओं से परे हैं,
silent peace.
दुख से परे हैं। इनका किसी में भी लगाव नहीं है। ये अपने शांत व संतुष्ट स्वरूप में स्थित
हैं।
जब ये आत्माएं इस वतन में रहती हैं या रंगमंच की यात्रा प्रारंभ करती हैं, तो संपूर्ण जागृत अवस्था में रहती हैं।
स्पिरिचुअल साइट
अपनी रूहानी दृष्टि से वे कहानी को कहानी के रूप में देखती हैं। वे स्वयं को कहानी में खो नहीं देती। धन्यवाद एरिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत भाई, एक सच्चे पांडव की तरह गाइड बनकर आप हमें उस सूक्ष्मता में ले गए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमें विस्तार से सूक्ष्म बातें बताई। शुक्रिया। आपका स्वर्णिम युग में बहुत बहुत स्वागत है। हम वहाँ भी आपसे मिलेंगे प्रशांत भाई। धन्यवाद एरिक भाई। ओम शांति प्रशांत भाई।